नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। अदालत के सूत्रों ने कहा है कि NIA ने बुधवार को दोषी कश्मीरी अलगाववादी नेता यासिन मलिक के लिए मौत की सजा की मांग की, जिन्होंने पहले आतंकी फंडिंग मामले में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत सभी आरोपों को स्वीकार किया था। एजेंसी ने विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह के समक्ष अपना पक्ष रखा, जबकि मलिक की सहायता के लिए अदालत द्वारा नियुक्त न्याय मित्र ने आजीवन कारावास की मांग की, जो मामले में न्यूनतम सजा है। इस बीच मलिक ने न्यायाधीश से कहा कि वह सजा की मात्रा तय करने के लिए इसे अदालत पर छोड़ रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में राज्यसभा चुनाव के लिए बुधवार को नामांकन दाखिल किया। कपिल सिब्बल ने नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया को बताया कि उन्होंने 16 मई को ही कांग्रेस छोड़ दी थी और वो सपा के समर्थन से नामांकन कर रहे हैं। वहीं कपिल सिब्बल के नामांकन के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा, समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल को राज्यसभा की सदस्यता के लिए नामांकन किया गया। वे समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा जा रहे हैं। पहला नामांकन हुआ है, राज्यसभा के लिए दो अन्य लोगों के नाम बहुत जल्द घोषित हो जाएंगे। कपिल सिब्बल ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर और सपा के समर्थन से नामांकन भरा है। वहीं नामांकन दाखिल करने के बाद कपिल सिब्बल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्होंने 16 मई को ही कांग्रेस छोड़ दी थी। वाराणसी स्थित ज्ञानव्यापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग की पूजा की अनुमति देने का आग्रह करने वाली याचिका बुधवार को अदालत के पास भेज दी गई। अब इस पर 30 मई को सुनवाई होगी। शासकीय अधिवक्ता राणा संजीव सिंह ने बताया कि ज्ञानवापी परिसर में प्राप्त कथित शिवलिंग की नियमित पूजा अर्चना करने के अधिकार की मांग की याचिका को जिला जज AK विशेश्व ने फास्ट ट्रैक अदालत के पास भेजते हुए सुनवाई की तारीख 30 मई निर्धारित की है। उन्होंने बताया कि यह याचिका मंगलवार को सिविल जज रवि कुमार दिवाकर की अदालत में दायर की गई थी। इसमें ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिमों के प्रवेश को वर्जित करने, परिसर को हिंदुओं को सौंपने के साथ ही ज्ञानवापी में कथित तौर पर मिले आदि विशेश्वर शिवलिंग की नियमित पूजा अर्चना करने की अनुमति देने का आग्रह किया गया था। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में बुधवार को अचानक हुई मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद गुट के 3 पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए। पुलिस ने बताया कि उत्तरी कश्मीर के किरी इलाके के नाजी भट्ट में हुई मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी शहीद हुआ है। कश्मीर क्षेत्र के IG विजय कुमार ने ट्वीट किया कि मुठभेड़ घाटी में पुलिस द्वारा बनाए गए नाकों में से एक पर हुई। उन्होंने बताया कि मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी शहीद हुआ है। अधिकारी ने कहा कि इस साल अभी तक विभिन्न मुठभेड़ों में 22 पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए हैं। कुमार ने कहा कि पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराने का प्रयास और तेज किया जाएगा। शहर के शौरा इलाके में मंगलवार को हुए हमले में पुलिसकर्मी के मरने और उनकी बेटी के घायल होने के संबंध में किए गए सवाल पर अधिकारी ने कहा कि इस सिलसिले में लश्कर-ए-तैयबा के 2 स्थानीय आतंकवादियों की पहचान की गई है। दिल्ली सरकार द्वारा संचालित अस्पताल के चिकित्सकों ने COVID-19 रोगियों के नैदानिक प्रोफाइल की व्याख्या करके महामारी की महामारी विज्ञान संबंधी विशेषताओं की जांच करने के लिए एक अध्ययन किया और पाया उच्च रक्तचाप उनमें से सबसे आम सह रुग्णता थी। दिल्ली में कोरोना वायरस महामारी का मामला मार्च 2020 में सामने आया था। राष्ट्रीय राजधानी के 650 बिस्तरों वाले राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा किए गए इस अध्ययन में 9 से 96 वर्ष की आयु के कुल 3,534 रोगियों का नामांकन किया गया था। मई में जनरल ऑफ फैमिली मेडिसिन एंड प्राइमरी केयर में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार लक्षणों वाले रोगियों में बुखार और खांसी सबसे आम लक्षण थे, जबकि 5.6% रोगियों में कोई लक्षण नहीं थे। अध्ययन का हिस्सा रहे एक डॉक्टर ने कहा कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में आए COVID-19 रोगियों के नैदानिक प्रोफाइल की व्याख्या करके महामारी की महामारी विज्ञान संबंधी विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए ये कवायद की गई। शोधकर्ताओं ने अध्ययन के निष्कर्ष में लिखा, COVID-19 अपनी उच्च संक्रमण दर के कारण SARS से काफी अलग है। अब भी महामारी के बारे में कई अनिश्चितताएं प्रचलित हैं। संक्षेप में, यह महामारी दुनिया भर में चिकित्सा समुदाय के लिए एक बड़ी परीक्षा रही है और वास्तव में इसने कई मूल्यवान अनुभव प्रदान किए हैं। देश में मौजूदा स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और नीतियों को सटीक और भविष्य की दृष्टि से तैयार करने की आवश्यकता है। राज्य की गवर्नर ग्रेग एबॉट ने संवाददाताओं को बताया कि एक 18 वर्षीय बंदूकधारी ने मंगलवार को दक्षिण टेक्सास के एक प्राथमिक स्कूल में गोली चला दी, जिसमें 19 छात्रों और 2 वयस्कों की मौत हो गई। उवाल्दी शहर के रॉब एलिमेंट्री स्कूल में दोपहर में हुई गोलीबारी में संदिग्ध की मौत हो गई। अधिकारियों ने कहा कि 18 वर्षीय बंदूकधारी सलवाडोर रामोस ने अपने 18वें जन्मदिन के बाद कानूनी रूप से एक लाइसेंस प्राप्त बंदूक की दुकान से 2 राइफलें खरीदी। बंदूक खरीदने के एक दिन बाद उसने 375 राउंड गोला बारूद खरीदा और फिर 20 मई को दूसरी राइफल खरीदी। पिछले 2 दशकों में अमेरिका में बड़े पैमाने पर गोलीबारी हुई है, जिससे बंदूक नियंत्रण कानूनों और छात्रों की सुरक्षा के बारे में बहस तेज हो गई है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।